పాదజోరికరుణాకరుణపుష్టవాతిం రాధాకుండం గిరివర్మహో రాధికా మాధవాసం ప్రాప్తో పంచకల్పకరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యై పతితానాం పావన వైష్ణవేభ్యో నమో మహావదన్నాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయకే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నమః గురవే గౌరచంద్రాయ రాధికాయ కృష్ణాయ కృష్ణభక్తాయ ప్రజంతమనుపేతమేతాయనో విరహకాతరయా పుత్రేతి తన్మయతయాభినే తం సర్వోదయం నారద జీ ప్రయాగ से कृष्ण के सबसे बड़े कृपा पात्र कौन है इसको चलाकी से साथ दिखलाने के लिए वहाँ के जमींदार नरेश वो ठाकुर जी का बाल गोपाल मूर्ति लेकर और पूजा कर रहा था, कहा जैसे आपसे बढ़कर के कोई मैंने कि हम नहीं तो फिर दक्षिण भारत में बड़े राजा के पास में गए, उन्होंने कहा कि मैंने उससे बड़े इंद्र हैं, इंद्र ने कहा कि ब्रह्मा जी, इसी प्रकार से वो कहाँ गए पांडवों के पास में और फिर वहां से उद्धव के संबंध में सुना कि उद्धव जी भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, उनसे बढ़कर के और कोई प्रिय नहीं है। सुन करके और झट वो द्वारकापुरी पहुंचे, वीणा लेकर गायन करते हुए उद्धव उद्धव कहते हुए वहां पर महाराज परीक्षित कह रहे हैं, आई कैन नॉट स्पीक इन 2-3-4 लैंग्वेज, आई हैव स्पोकन सो मच इन इंग्लिश इन वेस्टर्न कंट्री, so one of you can translate, otherwise I will be more tired. But here all are Western devotees knowing English. All top to bottom. And those who are Hindi speaking, they have no interest to hear at all. So Narada Rishi would declare in whole world that who is the most superior, most dear to Krishna. And that is why he began his journey from Prayag and then South India to Indra, Brahma, Prahlad, Hanuman, and then Pandav, and then he came to Pandav, and they told, oh, we are not so much fortunate, we like Uttam, and they glorified him. Tat sutva, mahaprem, rasaveshena yantita, mahavishnu viro, kina hasta vasu vishnu tathati. Parikshit ji ne kaha, ji Mataji, Uddhav ka mahatma sun karke, kiske mukh se Yudhishthi Maharaj, Bhim, Arjun, Nakul, Sahadev, Kunti और द्रौपदी सब ने कहा, हमारे जैसा दुर्भागा कोई नहीं, हम लोग सबसे दुर्भागा है। तो उद्धव जी बड़े भगवान की कृपा पात्र, उस सबका पंचम अध्याय में उसका वर्णन किया हुआ। वो उद्धव ये कहे हैं, माता जी उद्धव जी का महात्मा सुन करके भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रिय नारद जी प्रेम रुषे आवेश में मग्न हो गए और सब कुछ भूल गए, देह और दैवी, बीणा बजाना भूल गए, बीणा हाथ में रही और वे द्वारकापुरी में वहां पर पहुंचे। सदा धारावती बासात अभस्त पुनर्वर्तमना प्रभु प्रसाद आदेशांत प्रवेश अस्य जवानी। नारद जी प्रेम में सब कुछ भूल गए, बात तो ठीक है, बिना भी नहीं बजा सके और उद्धव जी की जय जयकार बोलते हुए चलने लगे। द्वारकापुरी कैसी है, समुद्र के बीच में बड़ी बड़ी बीथियां हैं, रास्ता मार्ग, बड़े बड़े उद्यान हैं और 16,000 रानियों के लिए 16,000 राजमहल बनाए हैं और एक एक शमल ऐसे सुंदर हैं कि साधारण आदमी उसमें जा नहीं सकता, भूल जाएगा। विशेष करके रुक्मिणी जी का घर जहाँ है, यहाँ पर के कृष्ण रहते हैं, वहां पर जाना बहुत कठिन है और नारद जी प्रेम रस में पागल हो गए, तभी वे प्राय जाते आते रहते थे द्वारकापुरी में और रुक्मिणी के भवन में कृष्ण से मिलने के लिए जाते आते रहते थे। कृष्ण दर्शन लालसा, यद्यपि उनको अभिशाप है दक्ष प्रजापति का कि वे एक जगह गोदुग्ध काल से अधिक नहीं रह सकते, किंतु कैसे रह गए वहां, कैसे जाते थे? कृष्ण दर्शन लालता है, वो साप से मुक्त था, व्हाट आई टोल्ड यू और यू अंडरस्टूड समथिंग और यू शुड टेल के बोलते एनीवन इज स्पीकिंग हो Who is it? Eh? He is speaking then. You are under hearing? You are all hearing? He is speaking? Then? After you should speak. What I do?
So, it's describing, Krishna is describing to his mother. I'm now really trying to find what's the best recipient of the message to Krishna. He went from Indra to Lord Brahma. From Lord Brahma, he went to see the Pandavas. So the Pandavas told Narad, we are the real recipients of the message of Sri Krishna. The real recipient of the message of Sri Krishna is Uddhava. So when Narad heard this, he became so much ecstatic and mad, even he forgot to play his veena. He went running to Dwarkapuri. So Dwarkapuri is situated in the middle of the ocean. An ordinary person cannot enter there, very hard to enter. But Narada Muni became so mad, he entered into the house of Rukmini, a very, very astonishing opulence was there. So normally because of the curse of Prajapati Daksha, Narada could not stay in one place for more than a short period of time. But because he had so much desire to have darshan of Krishna, he became free from that curse and he went inside to see Krishna.
Daksha Prajapati, उसके बहुत से लड़के हुए और सब लड़कों को बालकों को भेजा नारद जी के यहाँ पढ़ाने के लिए, जिनको शाम ताम दंड भेद इत्यादि पढ़ाइए और पुत्र उत्पन्न इत्यादि संतति उत्पन्न कराने की भी शिक्षा दें, जैसे हमारी वंश परंपरा चले। किंतु नारद जी ने उनको असली शिक्षा पढ़ाई, जैसे उनको भक्ति हृदय में हुई और संसार आसार है ऐसा समझ करके सब लड़कों को भक्ति ऐसी शिक्षा दी, वो घर छोड़ करके चले गए भजन करने के। दक्ष प्रजापति आए, बोले हमारे लड़के कहाँ गए? तो वो तो यहां से पढ़ लिख करके चले गए। कहाँ गए ये तो नहीं जानते, वृंदावन में चलेगी, कहाँ चले गए? वो बहुत बिगड़ा, कहे इस बार अब हम अपने बच्चों को भेजेंगे क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त और कोई पढ़ाने वाला नहीं, उनका ऐसी शिक्षा मत देना जो घर बार छोड़ करके चले गए। ठीक है, फिर भेजा तो उन्होंने फिर इस बार ऐसा पढ़ाया जब फिर वो लोग भक्ति मार्ग में चले गए और घर में कोई नहीं लौटे। तो दक्ष प्रजापति बहुत बिगड़ा और क्रोध से साफ दिया, ये तुम कहीं भी दो क्षण नहीं टिक सकते संसार में, केवल रह सकते हो गोदोहन का काल बस एक जगह रह सकते, अधिक किसी को शिक्षा नहीं दोगे जैसे वो घर छोड़ करके चला जाए। नारद जी बड़े प्रसन्न हो, बोले जी आज से मैं इससे मुक्त हो गया, अब सर्वत्र जाऊंगा भगवान की शिक्षा। तो इस प्रकार से करने लगे, किंतु जब उनकी इच्छा होती जे कृष्ण का दर्शन करूंगा तो द्वारकापुरी में चले जाते। द्वारकापुरी में अभिशाप नहीं जाता क्योंकि कृष्ण के भुजाओं से रक्षित है। श्लोक का अर्थ है तो जगत में कोई भी अभिशाप है वो जगत में नहीं अपराकृत जगत है, इसलिए उसका साप वहां पर नहीं लागू होता था, इसलिए स्थिर रह करके जब तक इच्छा होती कृष्ण का दर्शन करते, उनके लीलाओं का भी दर्शन करते, सांप वहां नहीं जाता। इसलिए नारद जी वहां पर पहुंचे, पहले का अभ्यास था, बीच बीच में जाते थे, इसलिए प्रेम में उन्मत्त होने पर भी वो अपने आप उनका पैर चलता गया और रुक्मिणी के वन में पहुंचे, जो दूसरों के लिए पहुंचना बहुत भारी मुश्किल था।
So, Prajapati Daksha performed kind of studies to, when you order for Brahma to undergo creation. So he was a very learned person in all types of Veda. So he produced many, many sons. He sent them to perform austerities. At that time they met with Sita. He sent them to perform austerities to create more progeny. At that time, by good fortune, they met with Sri Narad Muni. Narad Muni gave them such instructions that bhakti entered their heart, and they never returned home, took sannyas and performed bhajan. So who knows where they went, maybe to Vrindavan. So Daksha very angry, so he told Narad, okay, don't give those type of instructions. So he had another lot of sons. He sent them also to perform austerity, so Narad Muni caught them also, and gave them instructions on bhakti tattva. So they also never returned home. So Prajapati Daksha became very angry. He gave a curse to Narad Muni. You can never stay in one place more than 2 seconds. Because for everywhere you go, you give such instructions that destroy and break family household situations. Therefore, never stay in one place. So Narad Muni became very happy. Oh, now I can go everywhere and reach Bhagavad Shiksha.
Right, or
Shiksha of pastimes. So, Narad Muni, sometimes he has desire to have darshan of Sri Krishna, so that he goes to Dwarkapuri. Because Dwarkapuri is protected by Krishna himself, because it's the upper transcendental dham, therefore no curse can work there. So Narad Muni, he went inside, which is very hard for an ordinary person to do. He is so much ecstatic and desirous to see Krishna, automatically his legs took him there into the palace of Rukmini.
नारद जी भूमक क्वापि स्खलति पतति क्वापि तिष्ठत अचेष्ट काप्य उत्कंप भजति लुटति क्वापि रोदिति वार्ता। नारद जी प्रेम में विवश होकर के और उद्धव की सेवाओं का चिंतन करते 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 कभी गिर पड़ते हैं जमीन में, कभी लौटते हैं पड़ते हैं, कभी चेष्टा रहते एकदम चुपचाप स्थिर हो जाते हैं। क्या तात्पर्य? ये प्रेमा भक्ति का लक्षण है। कृष्ण की लीलाओं का और उद्धव के साथ उनके संबंधों का चिंतन करते करते अष्टसात्विक भाव उनके आ गए, इसलिए प्रेम में विवश होकर के कभी गिर पड़ते हैं, कभी जमीन पर लौटते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। इस तरह से कभी लौटते पलटते हैं नथिंग, कभी जोर से रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, और कभी बहुत जोर से रोते हैं प्लुप स्वर से, और कभी कीर्तन करने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं, कभी युगपत समस्त प्रेम विकार एक साथ में उनको उत्पन्न हो जाए। ये खिले
ফোন করে দিয়েছিলাম, দিদিকে পাঠিয়েছিলাম, দিদি এগুলো চলে
গা নেই কীর্তন। জয় রাধা মাধব।
जितनी भी लीलाएं हैं वो देखेंगे ये हो रही
उस मूर्छा में भी परम आनंद है, इसलिए आनंद हमारे मूर्छित हो जाते हैं और संसार का सब कुछ विस्मित हो जाते हैं। संसारिक लोग समझते हैं जैसे हम मूर्छित हो जाते हैं वैसे कोई ज्ञान नहीं। जैसे किसी को कोई ऑपरेशन करना हो तो उसे सुना देते हैं कोई क्लोरोफॉर्म में आ गया, तो बाहर भीतर सब स्मृति उसकी नष्ट हो जाती है। कृष्ण भक्ति में ऐसा नहीं, ऊपर से ऐसा दिखता है और भीतर से क्या, उस समय कृष्ण की लीलाओं का चिंतन और मालूम होता है कि स्पष्ट रूप से कृष्ण की लीलाओं को दर्शन करते हैं। ऐसे उनको लोग समझा, बाहर के लोग समझते होंगे ये भूत इनको पकड़ ली, और भक्त लोग जब भी देखेंगे ना अभी इसको समझेंगे उद्धव जी, और लोग समझेंगे और कोई नहीं समझेगा। महापुरुषों के भावों को कनिष्ठ नहीं समझ सकते, ये असंभव। पूरा बोलो।
सो एज यू नो ग्रेट Eight types of Pakistani God could be seen in the body of Sri Narayani. Sometimes he became stunned, sometimes he would roll on the ground, sometimes he was shouting and crying very loudly. So what is this? This is the symptom of Prem Bhakti. And all eight could be seen on the body of Sri Narayani. So even though Narayani became so much like mad, this is not madness, this is under the influence of Sutta Sattva. So even though he forgot everything about his body, he never forgot which way is the path to Krishna's room. And so Sri Sanatana Goswami gave a commentary that the devotee may forget everything in this world, but he never forgets the path of bhakti. So sometimes we see that the gopis or any high-class Vaishnava, sometimes they fall on the ground and become unconscious. But their unconsciousness is not like us or like the unconsciousness or munis or other types of so-called sadhus. When the munis go into samadhi, they forget everything, this world, and also they forget themselves. But when the gopis or the Vaishnavas go into samadhi, they deeply remember all the name, form, qualities, and pastimes of Krishna. So Krishna Adhikari cannot understand like that. They think that when a Vaishnava goes into samadhi, like when they go into an operation and the doctor gives some anesthetic, at times that person forgets everything, but a Vaishnava is not like that. Even though they appear to be unconscious, they never forget their relationship with Krishna.
Hey, Manmati, Matari Dhani, Tamushavdhana Tarabhava, Tirtha Prapayanti Man, Tadhaityam Srimitam, Tidam Swami. हे मेरी मैया, और सावधानी से सुनो, अब तक जो सुना और उससे अधिक सावधानी से सुनो। मैं यदि कहीं मोहित हो जाऊं तो हमको भी धैर्य बंधाना, और तुम भी धैर्य से सुनो। अब यहां से प्रेम गोपियों के और गोपों के ब्रजवासियों का प्रेम का वर्णन होगा, ये तात्पर्य। इसलिए आप धैर्य धारण करो। यदि मैं धैर्य चुप हो जाऊं या बोलते बोलते मूर्छित हो जाऊं, भावना भी तो करते, तो हमको धैर्य बंधाना, और फिर धैर्य होने के बाद फिर सुनो। हे माता, उस दिन जिस दिन नरक वहां पर पहुंचे भूताभीष्ट होकर के, तो रुक्मिणी के घर के में जब गए तो देखा रुक्मिणी के घर के दरवाजे पर, द्वार देश पर, ओ श्रीमान उद्धव जी कुछ उदास मुख से बैठे हुए। उद्धव जी कहां बैठे थे? रुक्मिणी के घर में नहीं बैठे, रुक्मिणी के पलंग पर कृष्ण थे। उनको छोड़ करके ये दहली के पास में, दरवाजे के पास में बैठे हुए थे। अंत प्रकोष्ठ में भीतर में कृष्ण सो रहे हैं, दिन उठ आया है, काफी दिन चढ़ गया और कृष्ण सो रहे हैं, ऐसा ध्यान करके वो लोग बड़े दुखी होकर के उद्धव जी बैठे हैं और पास ही में श्री बलदेव जी, देवी मैया, रोहिणी, रुक्मिणी, सप्तभामा और सब महिषियां, ज्ञानमंत्री इत्यादि, ये सब बैठी हुई हैं बड़ी उदास मन से। आज कृष्ण को सोने में इतनी देर, उठने में देरी हो गई, क्यों ऐसा हुआ? और भगवत प्रवृत्ति हारिणी कंस की माँ पद्मा, पद्मा कौन सी? भगवत प्रवृत्ति हारिणी, भगवान की भक्ति की प्रवृत्ति को भी नष्ट करने वाली कंस की माता पद्मावती और दूसरी दूसरी दासियां सभी चुपचाप उदास मन से रहती, वो भी उदास मन से है सभी। इसलिए अपनी मैया को कहा, अब देखो ये विरह आएगा, बहुत सावधानी से सुनना, देखो उस दिन श्रीमान उद्धव जी बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? आज इतनी देर हो गई, सूरज कहाँ ऊपर चला गया, दिन हो गए 9-10 बज गए और कृष्ण क्यों सोए हुए हैं? इसलिए मालूम होता है कि उनकी तबीयत कुछ खराब है। अभी उस चीज को अभी बतला नहीं रहे कि हम विस्तार से, क्योंकि अभी इसमें बोलना उचित नहीं, क्योंकि नारद है ना उद्धव, सभी लोग और दिनों में प्रमत्त हो जाएंगे, इसलिए बोलना उचित नहीं समझा। हमारे और आपके जैसे नहीं है जो कि उनकी पीड़ा की बातों को सुन करके हम लोग हंसे, उनका अनुभूति होगी। इसलिए अभी ही उस चीज को खोल करके कह देना, अथवा मोह की आशंका से के ना भी किसी कारण से सोए हुए, कारण नहीं बदला है, कारण किंतु वह कुछ क्या है पहले पीछे बदला नहीं। इसलिए कृष्ण क्यों ऐसा हो गया आज अभी तक से सो रहे हैं? ऐसा सुन करके उद्धव जी भीतर से निकल कर बाहर में बैठे, अंतकुश रुक्मिणी के राजभवन से बैठ निकल करके बाहर में गए और बलदेव प्रवृत्ति देवकी की, बलदेव प्रभु, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, रोहिणी मैया इत्यादि सब उनके द्वार देश पर ही रहे हैं, भीतर में कोई नहीं है, भीतर में पलंग पर सो रहे हैं अकेले। पद्मावती सा प्रसिद्धा पद्मावती, कौन सी पद्मावती है? प्रसिद्ध बोलने का उद्देश्य है इनके पति उग्रसेन थे, किंतु कंस उग्रसेन का पुत्र नहीं था, वो द्रोणदैत्य का पुत्र था। कंस की माता बड़ी सुंदर थी, सुंदरी थी, तो उग्रसेन की पत्नी बड़ी सुंदरी थी बचपन में, तो वो अपने पीहर में आई और द्रोण दैत्य ने उन्हें देखा और उनका चरित्र भ्रष्ट किया, उसी से कंस राक्षस होकर के जन्मा, इसलिए उग्रसेन का पुत्र नहीं था कंस, इसलिए अपने पिताजी को कैद किया और भगवान का विरोध किया, पांडवों का विरोध किया, सब लोगों का विरोध किया, इसलिए वो कहेंगे प्रसिद्ध है। इसलिए वो प्रसिद्ध कंस की मैया भी वहां पर थी, वो उदास थी, क्यों? इसका कारण किससे बतलाएगा? वो भगवान की लीलाओं का बाहरी स्वरूप समझ करके कुछ अपने भाव से उसको बतलाती थी। गोपियां कृष्ण को चाहती हैं तो गौ चराने के लिए, प्रिय होने के नाते, पुत्र होने के नाते नहीं। और गोपियां क्या करती हैं ये रुक्मिणी जी जानती हैं, रोहिणी मैया जानती हैं। वो भीतर की भाव जानने वाले और ये बाहर की भाव। साधारण आदमी भक्ति के भावों को नहीं समझता, वो अपने जैसा ही दूसरों को भी ऐसा ही समझता है। एक कनिष्ठ अधिकारी व्यक्ति उत्तम अधिकार के भक्तों की बात को क्या समझेगा? या साधारण आदमी? सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी की सभा में आ रहे और लड़के साहब उनके ऊपर में फूल कंकड़ फेंक रहे हैं, स्त्रियां हंस रही है, ये पागल आ गए नंगे। और जब परीक्षित महाराज जी के समान में तरनारद इत्यादि सब उठ करके खड़े हो गए, वो उन लोगों ने क्या देखा? कोई महाभागवत आए? इसलिए देवतानों की भी शक्ति नहीं है कि वैष्णव को पहचान सके, तो और लोगों को इसलिए मत समझो कि वैष्णव को हम ठीक पहचान गए, सब गुरु को पहचान गए, ऐसा मत समझो।
So, Sri Krishna said to his mother, "Oh, mother, now appear very carefully and have to be very patient and steady, because now we will be talking about separation route and also about what a friend. So don't become unconscious, appear very, very patiently." At that time, Sri Narayana, he went into the room of Sri Rukmini Devi. At that time, what did he see? A very astonishing thing. Many, many people were there, including Uddhava, Devaki, Rohini Ma, Rukmini, Satyabhama, and Padma Bharati. None were inside the room, only Krishna was inside the room sleeping. This was about 10 o'clock in the morning, very, very light. So all because of humility, were not inside the room of Ogada on the doorstep. So all were very sad, especially Uddhava. Because Uddhava was thinking there must be something wrong with Krishna, some sickness or some unhappiness. Otherwise, he's sleeping so late. So when Narayana saw the situation, he did not speak, because he could understand that to speak at this time of separation was very inappropriate. So Padmavati was also there. She is the wife of Ugrasen and Kamsa's mother. So here, Sri Sanatana Goswami is describing Padmavati as Bhagavad Priti Harini, one who steals away one's tendency to serve Sri Krishna. Because Padmavati, when she was young, she was very, very beautiful, very attractive. So when she was given Mathura, one morning she went for a walk in her own garden and she was seen by the Rakshas Drumila. So Drumila became attracted to her and broke her chastity. So therefore, Kamsa is not really the son of Ugrasen, he's actually the son of the demon, Drumil. That's why he was a demon and was always against Krishna and against Krishna's devotees, the Pandavas, everyone. So someone like Padmavati, she cannot really understand the pastimes of Krishna. She has her own external understanding. But someone like Rukmini, like Rohini Ma, she can understand the real conception of Krishna's pastimes. For example, a mature person, he tends to think everyone is pretty much like me. So therefore, a Kanishtha Adhikari cannot understand the real behavior or speech of high class of Vaishnavas or the pastimes of Krishna. For example, when Sri Sukadeva Goswami, he approached bank of the river where Parikshit Maharaj was sitting. That time Sri Sukadeva Goswami was surrounded by many, many young boys and ladies. So those children were throwing stones and bits of bark on the head of Sri Sukadeva Goswami because they could not understand in exalted position. But when Sri Parikshit Maharaj and all the other monks saw, oh, Sukadeva Goswami is here, they really stood up and offered him so much respect, understanding, oh, Maha Bhagavad has come. So we should not jump to the conclusion that, oh, I understand Vaishnavas, I understand Gurudev. This is not a good idea.
Naraki इस प्रकार से अष्ट सात्विक भाव में विभोर हैं और वहाँ पर उन्हीं सप्तभामा जी इत्यादि हैं वो ऐसी हैं कि नहीं है इस अवस्था में पहुंच करके जमीन में लोट पोट रहे हैं आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है कभी रोते हैं कभी नृत्य करते हैं कभी सुखी पर लौटने लग जाते हैं ये भक्ति की कौन सी स्थिति है कौन सी स्थिति नारद जी कौन स्थिति में है तो ये प्रेम से स्थिति में पहुंच गए हैं और प्रेम से भी अधिक यहाँ पर स्नेह और प्रणय इत्यादि इसमें कुछ लक्षित हो रहे हैं इन्हें साधारण स्थिति नहीं है किंतु अपने से उद्धव को श्रेष्ठ मान रहे हैं है ना अपने से उद्धव सबको श्रेष्ठ मान रहे हैं और अपने को दीनहीन मान रहे हैं यही भक्ति का लक्षण है इसलिए अन्नाभिलाषिता सुन्नम जो श्लोक है उसमें कृष्णानुशीलनम कृष्णानुशीलनम उत्तम भक्ति ये उसकी स्थिति में कुछ और आगे अग्रसर होकर इसलिए साधारण नहीं है तुष्णी भूताश्च ते सर्वा वर्तमान सभीष्मय सत्यनारद प्राप्त अच्छन अक्षमता अपूर्व उस समय नारद जी की अपूर्व चेष्टा को देखा जो कभी ये गिर रहे हैं पढ़ रहे हैं कभी हाथ काट कर रहे हैं देख करके सभी लोग विस्मित हो गए आश्चर्यचकित हो गए और सब लोग उनको उनके पास में आकर के अवधेर दिया उनको और उस समय में वे लोग उठ करके नारद जी को और स्थिर कराए जरा स्थिर होइए कृष्ण सो रहे हैं उनकी निद्रा भंग ना हो जाए ये भी एक कारण और इसलिए उठ करके उनके अश्रु को मार्जन किया पानी लेकर के उनके मुंह को धोया नारद जी को स्थिर किया अब वो कुछ सुस्थिर हुए फिर वो बोले हे ब्राह्मण आप तो कृष्ण के बड़े कृपा पात्र हैं नारद को कह रहे हैं भगवान के बड़े कृपा पात्र आज हम लोग आपकी ऐसी अपूर्व चेष्टाओं को क्यों कैसे देख रहे हैं क्या कारण क्या है आपको ये क्या हो गया भूत जैसा आप लोट पोट रहे हैं और हम अशु पुलोक ये सब हो रहे हैं क्यों हो रहा है कारण क्या है आज से पहले तो हमने कभी नहीं देखा थोड़ा सा स्थिर तो होइए और बतलाइए तो उसके लिए हम लोग कुछ उपचार करेंगे उचित ना करेंगे मैया सुनो आगे नारद की आंखें आंसुओं से भरी हुई है क्यों उद्धव जी की कृष्ण की सेवा को स्मरण करके यदि कोई भी थोड़ी सी अपने गुरु भगवान की सेवा कोई करता है यदि शुद्ध भक्त होता है तो भाव में विभोर हो जाता है सेवक वह है जो दूसरों को अपनी गुरु सेवा में तनिक भी सेवा दे करके समझता है कि इसने बहुत सेवा की हम तो कुछ करते हैं या कोई भगवान का सेवक हो जैसे पुलिंद का न्याय गोवर्धन में भगवान की कौन सी सेवा की हिरण्य क्या सेवा की कृष्ण की और गोपियां क्या देख रही है उनको आप प्रणय नेत्र से कृष्ण की बंसी को सुन करके और उनका रूप देख करके ये मुक्त हो गए ये मूर्ख हैं क्या वो धन्यास गोपूल हमारा जो आप ये मूर्ख आप कृष्ण से पढ़े की भीख मांग रहे हैं और उसका पति पीछे पीछे उसके ये पुलिंद कन्याए कृष्ण के चरणों में लगे हुए महावर को देख करके प्रेम से मग्न होकर के अपने चारों शरीर में डूबती है हिमान राज कृष्ण को पा दिया और हम ऐसी दुर्भाग्य जाते नहीं कर सकते तो यही होता है श्रेष्ठ भक्तों का ये दर्शन यदि वो देखता है कि उनके आराध्य का उन्होंने कुछ देखा कि सेवा करते वो भाव में भी घुर यही हो रही है। तो परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं आंखों में आश्रम के भरे हुए हैं और वो नमस्कार करने लगे किनको जो बैठे बैठे हुए हैं उद्धव जी को देख करके उन सबको और बड़े कंपित कलेवर से पुटित होकर के गदगद स्वर से वे कहने लगते नारद जी ने कहा नारद जी बोले यदि आप लोग चाहते हैं हमको जीवित रखना और हमको शांत करना चाहते हैं तो महाभागवत उद्धव जी का दर्शन हमें करा दीजिए भगवान के आशा कृपा पात्र हमने कहीं नहीं सुना इसलिए उनका दर्शन करा दें अथवा आप लोग कृपा करें जो उद्धव जी की चरण की धूरी को मैं स्पर्श करके अपने शरीर में लगाऊं उसी में हमारी आत्मा शांत हो जाएगी हमने आज तक क्या प्राचीन या अर्वाचीन नवीन जितने भी प्रभु के अनुग्रह के पात्र हैं भगवान का ऐसा अनुग्रह किसी ने नहीं पाया जहां जहां वो गए उन सबको अब ले लो कोई प्रयाग से लेकर के अब तक जिनके पास में गए हैं पांडव इत्यादि से भी प्रभु का अनुग्रह ये प्राप्त इसीलिए भगवान ने स्वयं इनको अपनी विभूति कहा है भक्तों में मैं उद्धव ये विभूति बतला है और भी श्रीमद् भागवत में बतलाए हैं आगे बतलाए हैं
room of Krishna and all eight Apasabhi Bhavas were present. So just imagine Nara's position is no ordinary position. Even we can think he's crossed the stage of Ram and some snake, Pranayaman, Anurag, present in him to some degree. But what is he thinking? He's thinking, I'm the lowest. But Uddhav is the real recipient of Krishna's mercy. Seeing Nara's condition, everyone became astonished. Were present there at the doorstep, offered respect to Srinara Muni, and they calmed him down and made him peaceful, and washed his face with water. They thought, Narada should be calm, otherwise he will break Krishna's sleep. So, Narada said, oh, Uddhav, you are really the full recipient of the mercy of Krishna. And Uddhav was asking, oh, Narada, what happened to you? How you've become mad? That time, white tears were coming to the eye of Narada. That time, Srinara Muni was remembering, oh, Uddhav has done so much seva to Krishna. So this is the position of a real Vaishnava seva. Even if someone has done even a little bit of service to Gurudev, to Vaishnava, to Bhagavan, then a real Vaishnava will think, oh, they have done so much service, and they'll become ecstatic. Just like the gopis are the highest of all. When they see the peacocks, they think, oh, the peacocks have done so much service to Krishna. Just look how much love they have for him. When they see him, they become stunned by great sadhus. Polati, Aboriginal girl, Kanaya Punya. Actually, dog is a million of times greater than them, than the forest girl. But they, in their prayer, they think, oh, they are the real recipients of, they love Krishna so much. So Narada was saying, oh, only by water I cannot be calm. If you really want to calm me, or you really want to save my life, and give me darshan of Mahabhagavat like Uddha, and put his foot dust on my head, then only my mind and my soul can become peaceful. So Narada was thinking, oh, no one yet that I have met has got mercy like Uddha has got mercy from Krishna.
Our jivan ka uddeshya, aisi bhakti ko labh karna hai. इसलिए चेष्टा करो इसी जीवन में हम लोग उस स्थिति को प्राप्त करें. यदि प्राप्त भी नहीं करते हैं उस लाइन में तो आ जाए. अंततः श्रद्धा से निष्ठा और निष्ठा से रुचि में आने की चेष्टा करो. रुचि में आने के बाद में अनिश्चितता भक्ति समाप्त होती है. नहीं तो होगा जब विवाह करके रहूं या क्या करूं. और नारद जी जैसा रहूं. अरे प्रहलाद महाराज जी तो भक्त थे, वो भी तो शादी किया. आज व्यास जी ने क्या शादी नहीं किया तो हम भी करने में दोष हो जाएगा. फिर नारद जी, अरे नारद जी कौन कह रहा है, नारद जी ब्रह्मचारी हैं कि क्या है, वो बहुत ऊंचे हैं. इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य कम से अनिश्चितता भक्ति से निश्चितता भक्ति में आए. घर में रख करके पहले करूँ, बाद में करूँ, शादी करूँ कि न करूँ. अभी पुत्र घर में है और मैया पूरे हो रहे हैं, मैया भी और अब क्या करें. अब इधर इच्छा रह रही है जो मठ पास में करें, वो भी करें या वो करें. बड़ी क्रिटिकल स्थिति है. ये सब को छोड़ करके यदि भक्त नारद जी जैसा होना चाहते हो तो नारद जी जैसा बनो. 1000 गंधर्वियों के कितना करोड़ों गंधर्वियों के साथ में रहे पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के अभिशाप से, किंतु स्पर्श नहीं कर सका वो ये काम और हो. और फिर दूसरे जन्म में दासी पुत्र होकर के आए, तब शादी वादी कुछ नहीं किया और कैसे तपस्या की, भगवान का भजन किया, वैष्णव के संग में रहे, तब ऐसी भक्ति प्राप्त हुई. इसलिए गृहस्थ में चले जाएंगे और बस भक्ति झट मिल जाएगी. पांडव जैसा बन जाएगा ऐसा मत समझो. इन्हें जीवन का आदर्श बना करके कम से कम तो तुम लोग ये इस भक्ति में अनिश्चितता से निश्चितता में आओ और उसे रुचि आ जाए. जिस दिन नाम में रुचि आएगी, सेवा में रुचि आएगी, अर्चन में रुचि आएगी, रसोई बनाने में ठाकुर जी की रुचि आएगी, गुरु जी की सेवा में रुचि आएगी, तुम्हारा जीवन साफ. बस आज ये
So for this we have to work very hard. If we are now at the stage of Anishtha Bhakti, can't stay in devotional service, then we have to endeavor very hard to come to the platform of Anishtha Bhakti, that we are steady. If we are the platform of Anishtha Bhakti, we have to work very hard to come to the stage of Ruchi. So Anishtha Bhakti have many symptoms. For example, one may be thinking, oh, should I become Brahmachari, Madhvasi, or Sannyasi, or should I marry? Oh, Vyasadeva married, so what problem? The Pandava is also married. So if I marry, I can become like them in the Vajram. But hang on the other hand, Narada, he never married. And so many of our Guru Varaga never married. So what should I do? What should I do? Should I live in the mud? Should I take diksha? Or should I stay at home and do Vajram with my mother and father, and my mother and father and brothers? We should understand if we want to become get Prema Bhakti like Narada Muni, then we have to follow Narada Muni. Don't think, oh yes, the Pandava is also married, so I can also marry and I'll get Bhakti like the Pandavas. You should not think like this. For example, look at Narada Nishtha. even though he was cursed by Babaji and became Gandharva, even though he was surrounded by thousands and thousands of asuras, they could not catch his mind, they could not disturb him. So even from there, when he was cursed to become the son of a maidservant, Sukrani, even then, Naraguni, he never gave up his bhajan, he never married or anything. So we should try and follow like Naraguni, then we can hope to attain a type of devotion like Naraguni.
Oh,
Damodar, Damodar.